एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है और ज्ञान गोष्ठी के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान।
आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, कौन सी?
नाम है हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क्स।
हाँ, लेखक है वाक्लेव स्मिल।
ओहो, वाक्लेव स्मिल।
हाँ, ये किताब तो वाकई मतलब आंखें खोलने वाली हैं।
बिल्कुल, आज के जमाने में देखे ना, हम सब ये 5G, AI, मेटावर्स, एप्स,
हाँ, सॉफ्टवेयर,
इन्हीं सब की बातें करते रहते हैं। लगता है दुनिया बस कोड और स्क्रीन से चल रही है।
सही कहा। और ये किताब इसी सोच पर आप कह सकते हैं एक जोर का झटका देती है।
जैसे
ये बताती है कि भाई ये डिजिटल दुनिया, ये सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हमारी असल सभ्यता मतलब अरबों लोगों की जिंदगी, वो आज भी उन्हीं पुरानी भारी भरकम चीजों पर टिकी है।
जैसे कि सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक, अमोनिया और सबसे बढ़कर ऊर्जा।
हाँ, ऊर्जा, और वो भी ज्यादातर जीवाश्म ईंधन वाली, है ना?
बिल्कुल, और स्मिल का यही कहना है कि जब तक हम इस बुनियादी हकीकत को नहीं समझेंगे,
हाँ,
ये जो मटेरियल वर्ल्ड है,
सही।
तब तक ये क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी बड़ी बड़ी बातें करना, वो थोड़ा शायद बेमानी सा लगता है।
सही बात है। मतलब पहले ये तो समझें कि दुनिया असल में चलती कैसे है, तभी तो उसे बदलने की सोच सकते हैं ना?
तो चलिए आज इसी की तह में चलते हैं जरा।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। वाक्लेव स्मिल, शायद सभी ने नाम न सुना हो।
हाँ, जरूरी है।
देखिए, वाक्लेव स्मिल चेक कनाडाई वैज्ञानिक हैं, पॉलिसी एनालिस्ट भी हैं,
अच्छा,
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में प्रोफेसर एमेरिटस हैं, और ऊर्जा, पर्यावरण, खाना, अर्थव्यवस्था, तकनीक, मतलब आप नाम लीजिए और शायद उस विषय पर उन्होंने लिखा होगा।
कमाल है। सुना है 40 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं।
जी हाँ, 40 से ज्यादा। और उनकी खास बात यह है कि वो किसी एक दायरे में बंधे नहीं हैं।
मतलब
वो साइंस, इंजीनियरिंग, इतिहास, समाजशास्त्र, इन सब को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। और सबसे अहम बात,
क्या?
वो आंकड़ों के पक्के हिमायती हैं। नंबर्स, डेटा, किसी भी दावे पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक उसके पीछे ठोस नंबर न हो, कोई हवा हवाई बातें नहीं।
अच्छा,
इसीलिए शायद बिल गेट्स भी इन्हें इतना पसंद करते हैं।
हाँ, शायद यही वजह है।
वो मिल किसी भी तरह के हाइप में नहीं पड़ते। ना तो वो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी हैं, ना ही एकदम निराशावादी।
बैलेंस्ड व्यू।
बिल्कुल, वो बस ठंडे दिमाग से आंकड़ों के आधार पर बताते हैं कि देखो, जमीनी हकीकत ये है। एकदम रियलिस्टिक, तर्क पर आधारित नजरिया है उनका।
तो फिर ये किताब हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क्स, ये क्या कहती है? इसका निचोड़ क्या है?
देखिए, किताब का जो मूल आइडिया है वो ये है कि हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसे हम बड़े गर्व से इन्फॉर्मेशन एज या डिजिटल एज कहते हैं,
हाँ,
वो असल में चार भारी भरकम भौतिक स्तंभों पर खड़ी है।
चार स्तंभ। अच्छा, कौन कौन से?
पहला है ऊर्जा, एनर्जी,
ओके
और इसमें भी खास तौर पर जीवाश्मी धन।
ओके
दूसरा है खाद्य उत्पादन, मतलब फूड प्रोडक्शन। तीसरा है हमारी दुनिया बनाने वाली मुख्य सामग्रियां, मटेरियल्स। इसमें वो चार चीजों पर फोकस करते हैं, अमोनिया, स्टील, सीमेंट और प्लास्टिक।
अमोनिया, स्टील, सीमेंट, प्लास्टिक, हाँ, ये तो है ही बेसिक चीजें।
और चौथा स्तंभ है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, यानी दुनिया भर में चीजों का, सामान का आना जाना।
अच्छा,
तो ऊर्जा, भोजन, सामग्री और वैश्वीकरण। और स्मिल का कहना है कि हम इन चारों को
या तो नजरअंदाज कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं,
हाँ, या फिर इनके बारे में हमारी समझ ही गलत है।
हम सोचते हैं कि दुनिया सॉफ्टवेयर से चल रही है।
बिल्कुल, सिलिकॉन वैली से। पर असलियत में स्मिल बताते हैं, सीमेंट और स्टील के बिना, अमोनिया के खाद के बिना और डीजल से चलने वाले जहाजों के बिना, ये दुनिया तो रुक जाएगी।
सही बात है। ये किताब तो फिर एक तरह से रियलिटी चेक है।
बिल्कुल, ये हमें इसी फिजिकल रियलिटी का एक टूर कराती है कि कैसे एनर्जी काम करती है, हमारा खाना असल में कैसे उगता है और उसमें तेल का क्या रोल है,
हाँ, ये खाने वाला पॉइंट तो बहुत चौंकाने वाला है।
और हमारी इमारतें, मशीनें, ये सब किन चीजों से बनती हैं, और फिर ये सब चीजें दुनिया भर में घूमती कैसे हैं।
और इसका मकसद क्या है? सिर्फ ये बताना कि हम कितने निर्भर हैं?
नहीं, सिर्फ वो नहीं, मकसद है कि हम दुनिया को लेकर थोड़ी ज्यादा समझदार बने, रैशनल बने,
ताकि
जब हम क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने की बात करें तो सिर्फ अच्छी नीयत या किसी जादुई टेक्नोलॉजी के भरोसे ना रहें।
हाँ, मतलब हमें पता हो कि सिस्टम कितना बड़ा और जटिल है और बदलाव लाना कितना मुश्किल हो सकता है।
एग्जैक्टली तो चलिए पहले स्तंभ से शुरू करें, ऊर्जा।
हाँ, एनर्जी।
स्मेल इसे मास्टर रिसोर्स कहते हैं।
मास्टर रिसोर्स,
सही है, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। वो बताते हैं कि आज भी दुनिया की, आप मानेंगी नहीं, 80% से ज्यादा एनर्जी कोयला, तेल और गैस से आती है।
80%? इतना ज्यादा? रिन्यूएबल्स की इतनी बात होती है आजकल?
हाँ, बात होती है और वो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन स्मिल बताते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स में एक चीज है जो उन्हें खास बनाती है, उनकी एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी डेंसिटी मतलब
थोड़े से फ्यूल में बहुत ज्यादा ताकत। सोचिए ना, 1 लीटर पेट्रोल या डीजल आपकी गाड़ी को कितनी दूर ले जाता है, सोलर पैनल या विंड टर्बाइन से उतनी एनर्जी बनाने के लिए कितनी जगह और सामान चाहिए।
हाँ, ये बात तो है, और रिन्यूएबल्स की अपनी चुनौतियां भी तो हैं, जैसे वो हर वक्त उपलब्ध नहीं होते।
बिल्कुल, इंटरमिटेंसी कहते हैं इसे, कभी धूप है कभी नहीं, कभी हवा तेज है कभी नहीं।
और फिर उन्हें लगाने के लिए भी तो बहुत सारा स्टील, सीमेंट, प्लास्टिक चाहिए होता है।
सही कहा, और बैटरी स्टोरेज, वो अभी भी उतना सस्ता और बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है कि पूरी दुनिया की जरूरत पूरी कर सके।
और स्मिल एक और जरूरी बात कहते हैं ना एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में।
हाँ, वो बहुत जरूरी बात है कि एनर्जी ट्रांजिशन मतलब ऊर्जा के एक स्रोत से दूसरे पर जाना, जैसे लकड़ी से कोयले पर या कोयले से तेल पर।
यह सब
ये सालों में नहीं होता, इसमें दशकों या सदियां लगती हैं।
सदियां?
हाँ, ये बात हमें याद दिलाती है कि फॉसिल फ्यूल से पूरी तरह हटना ये कितना बड़ा और लंबा चैलेंज है, ये रातों रात होने वाला काम नहीं है।
ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, खाना, फूड प्रोडक्शन। ये हिस्सा तो मुझे बहुत ही मतलब चौंकाने वाला लगा था।
हाँ, क्या खास बात लगी?
ये कि हम जो खाना खाते हैं उसका सीधा एकदम डायरेक्ट कनेक्शन फॉसिल फ्यूल से है।
अच्छा, कैसे?
स्मिल खास तौर पर जिक्र करते हैं हैबर बॉश प्रोसेस का।
हैबर बॉश प्रोसेस, हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ा था कभी, अमोनिया बनाने के लिए।
बिल्कुल, ये वो तरीका है जिससे हवा की नाइट्रोजन गैस से अमोनिया बनाया जाता है और फिर उस अमोनिया से बनता है फर्टिलाइजर, खाद।
ओके, और इस खाद में?
इसी सिंथेटिक खाद ने 20वीं सदी में खेती की पैदावार इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि दुनिया की आबादी रॉकेट की तरह बढ़ सके।
अच्छा, लेकिन इसका फॉसिल फ्यूल से क्या लेना देना?
लेना देना ये है कि ये अमोनिया बनाने के लिए चाहिए होती है ढेर सारी एनर्जी, और वो एनर्जी आती है मुख्य रूप से नेचुरल गैस से।
नेचुरल गैस यानी फॉसिल फ्यूल?
हाँ, तो मतलब हमारे खाने की प्लेट का एक बड़ा हिस्सा असल में नेचुरल गैस से अपनी यात्रा शुरू करता है।
कमाल है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
और सिर्फ खाद ही नहीं, सोचिए ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल चाहिए।
हाँ।
कीटनाशक बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स चाहिए जो तेल से बनते हैं। फिर फसल को खेतों से मंडी तक, हमारे घर तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट, ट्रक, जहाज,
वो सब भी डीजल या दूसरे फॉसिल फ्यूल पर चलते हैं।
बिल्कुल, स्मिल का वो वाक्य मुझे याद रह गया, आधुनिक खेती असल में जीवाश्म ईंधन को भोजन में बदलने की प्रक्रिया है।
सोचो जरा, ये बात तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के पूरे आइडिया पर ही एक सवाल खड़ा कर देती है।
हाँ, कम से कम जब बात अरबों लोगों का पेट भरने की आती है, बिना सिंथेटिक खाद के क्या हम वाकई इतनी बड़ी आबादी का पेट भर सकते हैं? स्केल मतलब पैमाना बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ।
बात तो सही है। अच्छा, अब तीसरा स्तंभ, मटेरियल्स, वो चीजें जिनसे हमारी दुनिया बनी है।
हाँ, स्मिल चार चीजों पर खास ध्यान देते हैं।
अमोनिया, जो खाद के अलावा और भी चीजों में काम आता है।
हाँ, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह में। फिर स्टील।
स्टील तो खैर कहाँ नहीं है, हमारे घर, पुल, गाड़ियां, रेल की पटरियां, बर्तन।
सही, फिर सीमेंट जिससे कॉन्क्रीट बनता है।
और कंक्रीट तो कहते हैं पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है।
बिल्कुल, और चौथी चीज प्लास्टिक।
प्लास्टिक, इसके बारे में तो क्या ही कहें, हर तरफ।
और हम ये चीजें इस्तेमाल कितनी करते हैं? स्मिल जो आंकड़े देते हैं वो होश उड़ाने वाले हैं, हर साल अरबों टन।
अरबों टन, कल्पना करना भी मुश्किल है।
और इनको बनाने में लगती है बेहिसाब एनर्जी, खासकर स्टील और सीमेंट बनाने में।
हाँ सुना है, इनमें बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होता है।
बहुत ज्यादा, और वो तापमान अक्सर कोयला जलाकर ही मिलता है, और कोयला सिर्फ गर्मी ही नहीं देता बल्कि स्टील बनाने की जो केमिकल प्रोसेस है उसमें भी उसका रोल है।
अच्छा।
हाँ, तो इसे सिर्फ बिजली से रिप्लेस करना ये बहुत टेढ़ा काम है, इतना आसान नहीं है।
मतलब इनके बिना हमारी मॉडर्न लाइफ तो चल ही नहीं सकती।
बिल्कुल नहीं, और फिलहाल इतने बड़े स्केल पर इनका कोई सस्ता और कारगर विकल्प भी मौजूद नहीं है।
हम रिसाइकलिंग की बात तो करते हैं।
हाँ, रिसाइकलिंग जरूरी है और करनी भी चाहिए, पर वो हमारी कुल जरूरत का बस एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पाती है। नई चीजें तो बनानी ही पड़ती हैं।
ठीक है। और चौथा स्तंभ ग्लोबलाइजेशन।
हाँ, यानी दुनिया भर में चीजों का आना जाना। ये सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है?
बड़े बड़े कंटेनर जहाजों से, तेल के टैंकरों से, हवाई जहाजों से।
और ये सब चलते किस चीज से हैं?
भारी तेल, डीजल, जेट फ्यूल, यानी फिर से फॉसिल फ्यूल।
एग्जैक्टली। तो इस ग्लोबलाइजेशन ने हमें सस्ती चीजें जरूर दी हैं, इसमें कोई शक नहीं।
हाँ, दुनिया भर की चीजें आसानी से मिल जाती हैं।
लेकिन इसने हमारी सप्लाई चेन को बहुत कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं नाजुक भी बना दिया है।
हाँ, वो तो हमने देखा है, कभी स्वेज नहर में एक जहाज फंस जाता है
और पूरी दुनिया में चीजों की सप्लाई रुक जाती है,
या फिर कोविड जैसा कुछ आ जाता है
और अचानक से हमें पता चलता है कि जरूरी चीजें भी दूसरे देशों से आती हैं और उनकी कमी हो सकती है, दाम बढ़ सकते हैं।
हाँ, ये जो हमारी आपसी निर्भरता है, ये एक तरह की कमजोरी भी बन सकती है।
बिल्कुल। और स्मिल सिर्फ सप्लाई चेन के रिस्क की बात नहीं करते, वो पावर ग्रिड फेल होने के खतरे या बड़े सोलर स्टॉर्म्स, मतलब सूरज से आने वाले तूफान जैसे खतरों की भी बात करते हैं।
अच्छा, उससे क्या हो सकता है?
सोचिए, अगर किसी बड़े सोलर स्टॉर्म से हमारे सैटेलाइट्स या पावर ग्रिड ठप हो जाए, हमारी दुनिया बिजली और टेक्नोलॉजी पर इतनी ज्यादा निर्भर हो गई है कि ऐसी कोई गड़बड़ी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है।
बाप रे, ये तो डरावना है।
हाँ, तो ये चार स्तंभ हैं, ऊर्जा, भोजन, सामग्री और वैश्वीकरण।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आती हैं? मतलब की टेकअवेज।
मेरे ख्याल से पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि भौतिक दुनिया के नियम अटल हैं। हम कितनी भी वर्चुअल रियलिटी बना लें, असली दुनिया एटम और एनर्जी से चलती है।
हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम टेक्नोलॉजी से नहीं बदलते। हमारी दुनिया वेटलेस नहीं हो रही है।
बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात, हमारी सभ्यता की नींव में जीवाश्म ईंधन है और ये जड़ें बहुत गहरी हैं।
हाँ, ये सिर्फ हमारी गाड़ी या बिजली तक सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा खाना, हमारे कपड़े, हमारे घर, सड़कें, सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं। इससे बाहर निकलना मतलब सिर्फ एनर्जी सोर्स बदलना नहीं है,
बल्कि पूरी इंडस्ट्री और खेती का तरीका बदलना है।
हाँ, पूरी व्यवस्था को बदलना है। तीसरा पॉइंट है स्केल का, पैमाने की विशालता।
हम हर साल अरबों टन सामान बनाते और इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, इतने बड़े सिस्टम को बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत धीमा, बहुत महंगा और बहुत मुश्किल काम होने वाला है।
और ये बात भारत जैसे देश के लिए समझना तो और भी जरूरी है, जहां अभी कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बाकी है, सड़कें, पुल, मकान।
सही कहा। चौथे बात जो स्मेल बार बार कहते हैं, वो है नंबरों को समझने की जरूरत। सिर्फ नारों पर मत जाओ।
न्यूमरेसी कहते हैं वो इसे।
हाँ, न्यूमरेसी। जब कोई कहे कि हम फलां साल तक 100% रिन्यूएबल पर चले जाएंगे,
हाँ।
तो पूछो कितना, कैसे, कितनी एनर्जी लगेगी, कौन सा मटेरियल लगेगा।
मतलब आंकड़ों के बिना योजनाएं खोखली होती हैं।
बिल्कुल। आम जिंदगी में भी जब हम कोई बड़ी घोषणा सुनते हैं,
हाँ।
तो उसके पीछे के नंबर्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
और पांचवी बात।
पांचवी बात, सब कुछ जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है और इसीलिए नाजुक भी है।
हाँ, दुनिया के एक कोने की घटना दूसरे कोने में असर डालती है, चीजों की कीमतें हों या उनकी उपलब्धता।
ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े जटिल जाल का हिस्सा हैं। हमारी ताकत भी इसी में है और हमारी कमजोरी भी।
किताब में कुछ ऐसी लाइनें भी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं, कोट्स की तरह।
हाँ, बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं, हम एक फॉसिल फ्यूल वाली सभ्यता हैं। वी आर अ फॉसिल फ्यूल्ड सिविलाइजेशन। कितना सीधा और मतलब सच बयान करता है ये वाक्य।
हाँ, या फिर वो वाली लाइन, आधुनिक कृषि जीवाश्म ईंधन को भोजन में बदलने की प्रक्रिया है। मॉडर्न एग्रीकल्चर इज द कन्वर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इनटू फूड। ये सुनकर तो लगता है कि हम जो नेचुरल खाना समझकर खा रहे हैं।
हाँ, वो असल में कितना अननेचुरल तरीके से उग रहा है ना, एनर्जी के नजरिए से।
बिल्कुल। और एक और बात जो वो याद दिलाते हैं।
हाँ, वो एनर्जी ट्रांजिशन वाली, ऊर्जा परिवर्तन सदियों में होते हैं, दशकों में नहीं।
ये हमें थोड़ा धैर्य रखना सिखाता है, और जो लोग बहुत जल्दी वाले आसान समाधान बताते हैं, उन पर थोड़ा शक करना भी।
सही बात है। और सबसे आखिर में जो शायद किताब का मूल मंत्र है,
क्या?
दुनिया को बदलने की उम्मीद करने से पहले हमें ये समझना होगा कि दुनिया वास्तव में काम कैसे करती है।
मतलब प्रॉब्लम को ठीक से समझे बिना सोल्यूशन ढूंढना, वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है।
बिल्कुल।
तो फिर इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इस जानकारी का क्या करें?
मेरे ख्याल से पहली चीज तो ये है कि हम जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, मतलब सूचना के बेहतर उपभोक्ता बन सकते हैं।
कैसे?
जब कोई नेता या कोई कंपनी बड़े बड़े वादे करें, खासकर टेक्नोलॉजी या बदलाव को लेकर, तो हम थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल लगता है? इसके पीछे का स्केल क्या है? क्या ये वाकई मुमकिन है? वो सवाल पूछ सकते हैं जो स्मिल पूछते हैं, कितनी ऊर्जा, कौन सी सामग्री।
हाँ, ये तो अच्छी बात है, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग। और
हम सप्लाई चेन को शायद थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। जब प्याज के दाम अचानक बढ़ जाते हैं या किसी चीज की कमी हो जाती है,
हाँ,
तो हम शायद अंदाजा लगा सकें कि कहीं ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है या मौसम की मार है या कहीं और उत्पादन में समस्या है। ये सब जुड़ा हुआ है।
और अपने आसपास की चीजों को शायद अलग नजर से देखें।
हाँ, जैसे अपने आसपास की इमारतें हैं, सड़कें हैं, बिजली के खंभे हैं, इनको देखकर हम सोच सकते हैं कि इन्हें बनाने में कितना सीमेंट, कितना स्टील, कितनी एनर्जी लगी होगी, शायद इनकी थोड़ी कद्र बढ़ जाए।
ये भी सही है। और पॉलिसी लेवल पर
शायद हम ऐसी पॉलिसीज का सपोर्ट करें जो जमीनी हकीकत पर आधारित हो, न कि सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातों पर।
मतलब
शायद हमें ये मानना पड़े कि स्टील इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री को साफ करना, उन्हें डीकार्बनाइज करना उतना ही जरूरी है जितना सोलर पैनल लगाना, भले ही वो काम कम ग्लैमरस लगता हो।
हाँ, मुश्किल सवालों से भागना नहीं चाहिए।
बिल्कुल।
और अपनी पर्सनल लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पे
शायद ये समझ हमें थोड़ा ज्यादा जागरूक कंज्यूमर बना सकती है।
अच्छा,
ये जानते हुए कि हर चीज जो हम खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें एनर्जी और मटेरियल छिपा हुआ है, शायद हम थोड़ा रुक कर सोचें कि हमें वाकई कितनी चीजों की जरूरत है। क्या हम थोड़ा कम इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्बादी कम कर सकते हैं?
ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर मैं पूछूं तो इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बात आपके लिए क्या थी?
मेरे लिए तो वही खाने वाली बात थी, हैबर बॉश प्रोसेस और अमोनिया फर्टिलाइजर का हमारी फूड सप्लाई से इतना गहरा कनेक्शन। ये सोचना कि मेरे शरीर के प्रोटीन का एक बड़ा हिस्सा वो नेचुरल गैस से शुरू हुआ, ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला था। इसने नेचुरल की मेरी परिभाषा ही बदल दी।
हाँ, मेरे लिए भी ये काफी चौंकाने वाला था। और आपके लिए सबसे बड़ी सीख या टेक अवे?
मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे रहा स्केल और इतिहास का सबक, पैमाना और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। मतलब ये कि हम अक्सर बहुत जल्दी नतीजे चाहते हैं, छोटे छोटे दिखने वाले बदलावों से खुश हो जाते हैं, लेकिन स्मिल याद दिलाते हैं कि दुनिया के जो बड़े सिस्टम हैं, एनर्जी, फूड, मटेरियल्स, ये अरबों खरबों के निवेश और दशकों सदियों की मेहनत से बने हैं।
हाँ,
इन्हें बदलने में वक्त लगेगा, बहुत वक्त। हमें सब्र रखना होगा और उन मुश्किल, शायद बोरिंग लगने वाली समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा जिनका कोई आसान चमत्कारी जवाब नहीं है, जैसे भारी इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करना।
सही का। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करती हैं ना?
कौन सा सवाल?
कि अगर दुनिया ऐसे ही चलती है इन भौतिक चीजों और सीमाओं के साथ, तो फिर 9-10 अरब लोगों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास आखिर दिखेगा कैसा? हम इंसानी तरक्की और इस धरती की सेहत के बीच वो नाजुक सा बैलेंस कैसे बनाएंगे?
ये वाकई एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। शायद इसका जवाब आसान नहीं है और हम सबको मिलकर ही इसे ढूंढना होगा, इन सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए।
बिल्कुल, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।